ओम शांति। मुरली है 8 अक्टूबर 81 8 अक्टूबर 81 पांडवों से मुलाकात। सभी पांडव शक्ति स्वरूप होना, शक्ति और पांडव कंबाइंड हो, सर्वशक्तिवान के आगे शक्ति बन जाते और पाठ बजाने में पांडव सर्वशक्तिवान को शक्ति बनकर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आत्मा सीता है और वह राम है, तो इस पाठ में भी बहुत मजा है। यही पाठ सबसे वंडरफुल है संगम का, जो पांडव शक्तियां बन जाती और शक्तियां और शक्तियां भाई बन जाती। इससे सिद्ध होता है कि देहभान भूल गए हैं, आत्मा में दोनों ही संस्कार है। कभी मेल का कभी फीमेल का पार्ट तो बजाया है ना। संगम पर मजा है आशिकपन, माशुक को याद करना, शक्तिबन सर्वशक्तिवान को याद करना, सीता बनकर राम को याद करना। तो ये मुरली है 8/10/81 की, जिसमें बाबा पांडवों से बात कर रहे हैं कि सभी पांडव शक्ति रूप होना, सभी पांडव शक्ति स्वरूप है, शक्ति और पांडव कंबाइंड होना, सर्वशक्तिमान के आगे शक्ति बन जाते हैं और पाठ बजाने में पांडव सर्वशक्तिवान को शक्ति बनकर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आत्मा सीता है और वह राम, तो इस पाठ में भी बहुत मजा है। यही पाठ सबसे वंडरफुल है संगम का, जो पांडव शक्तियां बन जाती है और शक्तियां भाई बन जाती है। शक्तियां अपने आप को क्या समझेगी? पांडव। और पांडव अपने आप को क्या समझेंगे? शक्तियां। तो आज ये परिवर्तन कर दो, ठीक है कुमुद बहन? अपने आप को क्या समझेंगे फिर? पांडव। इससे सिद्ध होता है कि अगर ये समझेंगे तो क्या हो जाएगा? देहभान भूल गया, इंद्रप्रस्थ निवासी अर्थात इंद्रप्रस्थ निवासी कौन मुरली शंकर है? देहभान की बदबू नहीं, मनुष्यपन के बदबू से भी मुक्त। मनुष्यपन की जो बदबू है, मनुष्य अर्थात स्वयं को आत्मा न समझ, क्या समझना? देह समझना, ये है मनुष्यपन। बाबा ने आज कहा इंद्रप्रस्थ में केवल और केवल परिया निवास करती है, ज्ञान योग के पंख मजबूत हो। देह देहभान देह के संबंध सब कुछ बोले हुए, ऐसे जो है वो है इंद्रप्रस्थ निवासी। तो शक्तियों को अपने आप को पांडव समझना है और पांडवों को अपने आप को शक्तियां समझना है। शक्तियां बहने, यदि अपने आप को पांडव समझेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्भय बन जाएंगे, नारीपना समाप्त हो जाएगा, नाजुकपना समाप्त हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा? कोमलता, नाजुकपना, नारित्व, स्त्रीण स्वभाव समाप्त हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रोना बंद। चिमन भाई जी, रोना बंद। यहां पर रोने में सबसे नंबर वन कौन है वो हाथ खड़ा करो। रोना किसको पसंद है? है बैठे इधर रोने वाले, इमोशनल सेंटिमेंटलिज्म, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा इमोशनल, छुई मुई, टच मी नॉट, फीलिंग बेबी। फीलिंग बेबी कौन कौन है? जो रोते हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा? थोड़ा थोड़ा रोते हैं, जो रोते हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा है? कौन है वो? विधवा। कोई कोई सुपर विधवा भी है इधर। तो शक्तियों को स्वयं को पांडव समझना है, बहनों को स्वयं को भाई समझना है, तो क्या हो जाएगा? स्त्री स्वभाव, नाजुकपन, फीमेल पना समाप्त होगा। इमोशंस, पजेसिव नेचर, दूसरे को पजेस करना, इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, स्वयं को हीन भाव, हीन समझना, स्वयं को कम समझना, कोमल समझना, बार बार दुखी होना, ये सारी कमजोरियां होती है। ये सभी से ईर्ष्या का भाव, अधीनता का भाव, निर्भर, दूसरे पर निर्भर, हर चीज के लिए किसी और पर निर्भर, हर चीज के लिए किसी भाई पर निर्भर, भय, ये सारे जो भाव है स्त्री पने के, नारीत्व, नारीपन, सबसे मुक्त हो जाएंगे। तो क्या अभ्यास करेंगे आज? मैं पांडव हूं या फिर द्वापर से अब तक हमने भिन्न भिन्न जन्म लिए हैं, कभी स्त्री शरीर में, कभी पुरुष शरीर में, कभी स्त्री शरीर में गए, कभी पुरुष शरीर में गए। अपने को देखना है कि इसके पहले मैं पुरुष शरीर में, उसके पहले कभी स्त्री, उसके पहले कभी स्त्री, उल्टा चक्र, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष, पीछे पीछे घुमाना है द्वापर तक, उसके ऊपर और घुमाओ, कभी देव कभी देवी, कभी देव शरीर में कभी देवी शरीर में, कभी देव शरीर में कभी देवी शरीर में। तो उस देह में स्थित होते ही वैसे वैसे संस्कार इमर्ज होंगे। शक्तियों को ज्यादा इमर्ज करना है पांडव, मैं पुरुष शरीर में हूं, इसके पहले अभी स्त्री शरीर में हूं, इसके पहले पुरुष शरीर में, ज्यादा से ज्यादा पुरुष शरीर में। तो नारी पने के जो संस्कार है, रोना, फील करना, इमोशनल होना, स्वयं को दोषी ठहराना हर बात में, डरना वो तो है ही, स्वयं को दोषी ठहराना, ये भी एक सूक्ष्मतम संस्कार है। हीन भावनाओं में रमन करना, स्वयं को हर बात के लिए जिम्मेवार समझना, ये जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है, ये भी एक सूक्ष्म संस्कार है जो गिराता है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट कहते हैं पति पत्नी के बीच स्त्री में बदले का सूक्ष्म भाव रहता है। किसके प्रति? पति के प्रति। क्यों? अति सूक्ष्म, कोई स्वीकार नहीं करता, अवचेतन की परतों के अंदर छिपा हुआ एक बदले का सूक्ष्म भाव रहता है। संसार के सारे पुरुषों को श्रेष्ठ समझती है, परंतु अपने ही प्रति, पति के प्रति ऊपर से पति परमेश्वर, परंतु अंदर से एक सूक्ष्म बदले का भाव होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा है, क्यों है? अति सूक्ष्म भाव पनपता है कहीं ना कहीं सूक्ष्मतम तल पर। क्यों? पिछले जन्मों में, इस अपने पिछले में, अभी के जन्म में बार बार रोते वो तो ठीक है, वो तो भी फिर भी ठीक है।
हमारा
उत्तर जो दिया है वो काम विकार से संबंधित है। स्त्री स्त्रियों में निष्क्रिय वासनाएं होती है, पुरुषों में सक्रिय वासनाएं होती है। निष्क्रिय वासना की अभिव्यक्ति नहीं होती, पर जो उसे सक्रिय वासना में घसीटता है बार बार वही देह के खेल अंदर में एक सूक्ष्म भाव होता है बदले का। कभी न तृप्त होने वाले पुरुष की वासनाओं का वो शिकार बनती है। इसके लिए ऊपर अंदर ही अंदर सूक्ष्मतम में उसके अंदर एक बदले का भाव होता है। वैसा ही बदले का भाव पुरुष में भी होता है। जब ब्रह्मचर्य की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं तब समझते हैं अपनी वासना को दोष नहीं देकर स्त्री को ही दोषी ठहराते हैं कि इसी की वजह से हुआ है। दोनों में भी सूक्ष्म बदले का भाव होता है। जब तक एक दूसरे को वो माफ नहीं करते तब तक ये भाव चलता ही रहता है। तो बाबा यहां जो अभ्यास दे रहे हैं वो कौन सा है, तो पांडव शक्तियां बन जाती, ये वंडरफुल है संगम पर, और शक्तियां भाई बन जाती। तो स्वयं को इस चक्र को घुमाना है। इस शरीर से पहले मैं किसी और तन में थी, उसके पहले किसी और तन में, उसके पहले किसी और तन में, इतने सारे शरीर। आत्मा एक से निकलकर दूसरे में जा रही है, पुरुष से स्त्री में, स्त्री से पुरुष में, दोनों ही शरीरों के संस्कार उसमें है। वास्तव में आत्मा का कोई लिंग नहीं, निर्लिंग है वो। आत्मा अलिंग है, निर्लिंग है, परंतु जैसे ही पुरुष देह में स्थापित होती है वो सारे संस्कार उसमें इमर्ज हो जाते हैं। अगर पुरुष की आत्मा स्त्री शरीर में चली जाए स्त्री के सारे ही संस्कार स्वतः ही आ जाते हैं, परंतु ज्यादा समय अगर पुरुष के शरीर में रही है और स्त्री के शरीर में चली जाए तो स्त्री के शरीर में होते हुए भी पुरुष के संस्कार होते हैं। यदि स्त्री के शरीर में ज्यादा समय रही है और फिर पुरुष के शरीर में चली जाए तो बचपन से ही वह पुरुष स्त्री शरीर का होता है। पाश्चात्य जगत में कवि हुआ है पर्सी बीसी शेली, वो लिखता है कि बचपन से ही सारे कॉलेज में उसे स्त्री कहते थे क्योंकि वो स्त्री जैसा ही व्यवहार करता था। कोमलता उसमें थी, नाजुकपना, शर्म, लज्जा, वो सारे ही संस्कार थे। इससे भी मुक्त होना है, लज्जा शर्म ये सारे स्त्री बने के संस्कार, स्त्रीण संस्कार है। तो देहभान भूल जाए, इस अभ्यास से देहभान भूलेगा। मैं आत्मा कभी देव शरीर में, कभी देवी शरीर में, कभी देव कभी देवी, कभी देव कभी देवी, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष। तो यह अभ्यास करना है। आत्मा में दोनों ही संस्कार है, कभी मेल का कभी फीमेल का पार्ट तो बजाया है ना, संगम पर मजा है। आशिकबन माशुक को याद करना, शक्तिबन सर्वशक्तिवान को याद करना, सीताबन राम को याद करना। याद करने के संबंध में स्त्री और वो पुरुष, व्यवहार में परंतु शक्तियां पांडव समान हो जाए। अभी मुरली मुरली ही 29 अक्टूबर 1981 कुमारों से बाप दादा बात कर रहे हैं। अपने को सदा राज ऋषि समझते हो, अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि जब स्व का राज्य होता है तो स्व को स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी, तो राज्य भी और ऋषि भी तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। तो सबसे पहला सम्मान जो बाबा ने दिया है वो कौन सा है? मैं राज ऋषि हूं। राजा भी हो तो ऋषि भी हो। राजा अर्थात स्वराज्य अधिकारी, राजा अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, राजा अर्थात जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर राज्य करने वाला। कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए, अगर जा रहा है अर्थात राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी नहीं है। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो, बिल्कुल विजयी, क्योंकि वायुमंडल तो कलयुग ही है ना, और साथ भी हंस और बगुलों का है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सेफ रहेंगे। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण न हो, इस दुनिया की कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित नहीं करे। तो यह सबसे पहला सम्मान दिया, कौन सा? मैं राज ऋषि हूं। ऋषि अर्थात तपस्वी, तप करने वाला, तपाने वाला, जलने वाला। दूसरा, कोई कंप्लेन नहीं, सदा कंप्लीट। कुमारों की कंप्लेंट आती है। कुमार यदि विजयी बन जाए तो सबसे महान है, क्योंकि गवर्नमेंट भी युद्ध को आगे बढ़ाती है, उसमें भी कुमार ज्यादा होते हैं। कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि नागेश भाई कुमार जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों? हाँ, शरीर से भी शक्तिशाली है और निर्बंधन भी है, और मन भी मजबूत है। और क्या बताएं अरुण भाई? मनोबल बहुत ज्यादा है और जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या? हाँ, उमंग उत्साह बहुत ज्यादा है, जुनून है, जोश है, पावर है, शक्ति है, और शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा है। स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र है, पवित्र है, जिम्मेवारी नहीं है गृहस्थी जैसी। और एनर्जेटिक ज्यादा है। कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति बहुत है। लेकिन शक्ति को व्यर्थ तो नहीं गवाते, संकल्प और स्वप्न में। बाप के सिवा और कोई नहीं, तब कहेंगे क्या? संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवा और कोई नहीं, तब कहेंगे कौन से कुमार? तपस्वी कुमार। संकल्प और स्वप्न में कुछ दिन पहले एक स्लोगन था, सच्चे तपस्वी कौन है? सच्चे तपस्वी वह है जो संकल्प और स्वप्न में भी कौन है? दिलाराम बाप की याद है। उच्च ब्राह्मण कौन है? स्लोगन था, अपनी शक्ति से बुरे को भी अच्छे में बदल दे, वह है उच्च ब्राह्मण। बाबा यहां कह रहे संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवा और कोई नहीं, तब कहेंगे कौन से कुमार? तपस्वी कुमार। और अशोक भाई, संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवा कोई नहीं, तो क्या कौन से कुमार कहेंगे? पवित्र कुमार। और संतोष भाई, कौन से कुमार? संकल्प और स्वप्न में बस एक बाप, राज ऋषि कुमार। कमलेश भाई, कौन से कुमार? वो छुपे हुए हैं। कौन से कुमार? गुप्त कुमार। मनी भाई, कौन से कुमार? हनुमान, हनुमान कुमार। सनत कुमार, सनत कुमार, सनत कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार। और अभी तक ये सुकुमार और श्रेष्ठ कुमार, महान कुमार, बेस्ट कुमार, शिव कुमार, राज ऋषि कुमार, ब्रह्मा कुमार और तपस्वी कुमार और अभी तक नहीं आया इधर का मनोज भाई, पावरफुल कुमार, दिल करते मशीन कुमार, निखिलेश भाई, शीतल कुमार, संकल्प और स्वप्न में बात किसी का कोई नहीं, एक व्रता और पवित्र, हाँ पवित्र हो गया और इधर का नहीं है अभी तक, पतिव्रता कुमार, वफादार सच्चे कुमार, सबूत और विश्व परिवर्तक कुमार, विश्व कल्याणकारी कुमार, एक होता और वेदांत कुमार, महावीर कुमार, संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवा और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर वन कुमार, कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कुमारों का टाइटल ही है विघ्न विनाशक, किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मना, किसी भी विघ्न के वशीभूत ना हो, मनसा भी विघ्न उसके भी वशीभूत ना हो, इसलिए बच्चों का ही टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश बच्चे है ना, तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है। प्रैक्टिकल बने हो तब यादगार बना है। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी, वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा, जैसे तत्वों से मौसम बदलती है वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा। सबसे बड़े विघ्न कौन से हैं? मनसा के। सारा कार्य कहां करना है? मनसा के विघ्नों को समाप्त करने का। एक एक संकल्प श्रेष्ठ हो, महान हो, निर्विकार हो, ऊंच हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, दिन रात, कल की मुरली में था ना, दिन रात बच्चे बाप की श्रेष्ठ मत पर चलने में लगे हुए हैं, दिन रात श्रेष्ठ मत पर चलने में लगे हुए हैं, तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाए। संसार के विघ्नों को अगर नाश करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वयं के विघ्नों को पहले समाप्त करने पड़ेंगे। सदा यह स्मृति रखो कि हम विजयी वायुमंडल, हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। क्या करना है? विजयी वायुमंडल बनाना है, जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही शक्तिवान बनो। सूर्य चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, वैसे ही शक्तिशाली बनो। कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। कुमार अगर फ्री हुए तो क्या कर देगी मनी भाई? इसके लिए फ्री नहीं होना है, और क्या होगा? कुमार अगर फ्री हुए तो धमाल करेंगे, माया पकड़ लेंगी और अपनी आजादी को गलत उपयोग करेंगे और डिस्ट्रक्शन और कुमारों को अगर फ्री छोड़ दिया जाए, सेवा से मुक्त कर दिया जाए, एनर्जी वेस्ट और घूमने फिरने जाएंगे, लड़का क्या लड़का नहीं और क्या बोला, अगर फ्री हो जाए तो सब कुछ वेस्ट करेंगे। कल कहा था बचत की स्कीम बनाओ, वेस्ट नहीं करो, आत्मा पर वेट बहुत है उसको कम करो, तो व्यर्थ में चले जाएंगे। युवा राष्ट्र का धन होता है, युवा जो है वो राष्ट्र का धन है। अगर राष्ट्र का धन जो है वही व्यर्थ चला जाए तो उस देश की उन्नति नहीं अवनति होगी, देश सीधा कर्त में चला जाएगा। इसके लिए सारा कार्य युवाओं पर करना है, क्योंकि यौवन की जो अवस्था है वही उत्तेजना का समय है। व्यक्ति जब प्रौढ़ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, वह वहां पर थोड़ा मैच्योर हो जाता है। एक रीति से बुढ़ापा उस अर्थ से बहुत अच्छा है। वैराग्य की दृष्टि से जब वैराग्य पे क्लास होती है तो हम कहते हैं बुढ़ापा को याद करो ताकि वैराग आ जाए, परंतु जब इच्छाएं और तृष्णाएं और वासनाओं की बात आती है तब उस रीति से बुढ़ापा थोड़ा अच्छा है, क्योंकि युवा अर्थात उमंग रहता है परंतु जोश भी रहता है, जुनून भी रहता है, उत्तेजना रहती है, उत्पात रहता है, चंचलता होती है, समझ नहीं होती। जो करता है उसमें अहंकार छुपा होता है, जो करता है वो घोड़े पर सवार होता है जोश के, जुनून के, और इच्छाएं और तृष्णाएं उसको बार बार कंपित करती है, बार बार वश में करती है, कुछ करना चाहता है। तो उस रीति से बुढ़ापा अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं कुमार अगर फ्री हुए तो उत्तर अब तक नहीं आया है, क्या हो जाएगा? अशोक भाई कुमार अगर फ्री हो गए तो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, क्या करेंगे? व्यर्थ के संकल्प करेंगे और डबल हो जाएंगे अदर कुमार। क्या करेंगे? अवज्ञाएं करेंगे, डिससर्विस करेंगे और अच्छा सोचेंगे बिल्ली की आवश्यकता है तो बिल्ली से फिर क्या आएगा? पहले चूहा, चूहे से बचने के लिए बिल्ली, बिल्ली से बचने के लिए दूध, दूध को लाने के लिए गाय, गाय की रखवाली करने के लिए स्त्री, और फिर धीरे धीरे पत्नी, और उसके बाद बच्चे, और गाय के भी बछड़े, और इतना बड़ा गृहस्थ। एक संकल्प से बहुत कुछ हो जाएगा। कुमार अगर फ्री हुए तो गुरुपीतम, ग्रुप बनेंगे और फिर उसका लीडर बनेंगे। क्या करेंगे? और हाँ इस तरह से करते हैं, अपना ही ग्रुप बनाते हैं एक सबके विरोध में। सोचते हैं अभी हम गुरु है, अब तक ये लोगों को गुरु समझा, अब तक इनको सुना, अब सब हमारी सुने, उत्तर अब तक नहीं आया है। फिर कुमार अगर फ्री हुए तो अलबेले हो जाएंगे, ये अच्छा उत्तर है। कितना प्यार, कितनी पालना कुमारों को पालने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो। और उनको बिजली भी रखना है, उनको सम्मान भी देना है, पालना भी देनी है, महिमा भी करनी है, क्योंकि किसी भी सेंटर की शोभा कुमार और वहां की कुमारियां होती है। अगर कुमार नाराज हो गए तो बहुत नुकसान है। अगर कुमार अगर फ्री हुए तो खिटखिट हो जाएगी, कुमार बीजी रहे तो अहो सौभाग्य। कुमार अगर बीजी रहे तो सेवा करते रहेंगे, कुमार अगर बीजी रहे तो इजी हो जाएंगे, कुमार अगर बीजी रहेंगे तो सेंटर का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, उन्नति हो जाएंगे, स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, बाबा को प्रत्यक्ष को करने की मशीनरी तेज हो जाएगी और पवित्रता की मशाल जलाएंगे और फैलेगी और कमाल कर देंगे, वातावरण को शक्तिशाली बनाएंगे। और चिंतन है नहीं, कल बोला था ना चिंतन कब करना है, तो ये समय है चिंतन करने का, जिसमें बुद्धि फ्रेश होती है, एक पॉइंट लेके उसका विस्तार करना, प्रश्न उत्पन्न करना मन में और फिर उसका उत्तर ढूंढना, ऐसा क्यों, ऐसा कब, ऐसा कहां, ऐसा किस लिए, ऐसा कैसे, चिंतन में ये सारे प्रश्न काम आते। नेगेटिव रीति से नहीं, जो बाबा कहते क्या क्यों को समाप्त करो वो दूसरा, परंतु चिंतन की विधि क्या है, व्हाई, व्हिच, वेयर, हाउ, ये सारी विधि है। तो कुमार बीजी रहे तो स्व का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण, तो विघ्न विनाशक बन, वायुमंडल बनाने में बिजी रहो, अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ, अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। एक एक कुमार या कुमारी, एक एक कुमार अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर अर्थात मूर्छित को महावीर सुरजित करने वाले हो, तो सदा अपना यह ऑक्यूपेशन या धंधा याद रखना। क्या धंधा है हमारा, जो बेहोश है उनको होश में लाना, जो मूर्छित है उन्हें सुरजित करना, जो मूर्छा में उन्हें अवमूर्छा में लाना, जो सोए हुए हैं उन्हें जगाना, ये कार्य है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन नहीं भूलता, ऐसे यह अलौकिक ऑक्यूपेशन भी सदा याद रहे। तो हमारा कार्य क्या है, ये कार्य है। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं उनकी स्मृति में रहो, जो भी टाइटल मिले हैं उनकी स्मृति में रहो। ये टाइटल ही तुम्हारी डिग्री है, पिछले संडे कहा था ना, ये टाइटल ही तुम्हारी डिग्री है, इस डिग्री के आगे वो डिग्री क्या है। अगर इन टाइटल को अगर इकट्ठा करो तो छोटी सी किताब बन जाएगी, बाबा ने कहा था पिछले संडे, छोटी सी किताब बन सकती है, इतने टाइटल तुम्हारे हैं। बाप के टाइटल बच्चों के समान, अव्यक्त महावाक्य कभी आया था, बाप के टाइटल बच्चों के समान। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी टाइटल मिली है उसकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही कौन याद आ जाएगा, एक तो बाप और दूसरा कर्तव्य याद आ जाएंगे, और गुण शक्तियां, यहां बाबा कह रहे हैं टाइटल याद आने से स्वतः ही टाइटल दाता, ज्ञान और ज्ञान दाता दोनों भी याद आ जाएंगे। मनन करते करते मगन अवस्था उपलब्ध हो जाएगी और मगन अवस्था में स्वतः ही मोहब्बत के सागर में समाये रहेंगे। मगन अवस्था में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मगन अवस्था में याद स्वतः ही होगी, निरंतर होगी। मुश्किल है यह संकल्प नहीं उठेगा, निर्बल बनना नहीं होगा, अनुभव के सागर में समा जाएंगे, अंतर्मुखता स्वरूप में सदा समा जाएंगे। कब, जब टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों ही याद आ जाएंगे। तो आज क्या करना है, सबसे पहले शक्तियों को स्वयं को पांडव समझना है, पांडवों को स्वयं को शक्तियां समझना है, पांडवों को स्वयं को सीता समझ राम को याद करना है। महाभारत में रामायण में जो दृश्य है, सीता को जब रावण ले जाता है तो सबसे बेचैन कौन होता है, लक्ष्मण। सबसे ज्यादा बेचैन कौन होता है, राम होता है ना। देखो जब सीता को रावण चुरा कर ले जाता है, व्याकुलता किसकी है, राम की। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। सबसे पूछता है हे खगो मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे वृक्ष, हे फल, हे झाड़, हे आकाश, एक एक से जाकर पूछता है कितनी व्याकुलता दिखाई है। तो सीता समझकर वो राम हमको याद करते हैं। तो दूसरी बात, यहां पर सीता समझकर राम को याद करना, माशुक्षम आशिक समझकर माशुक को याद करना, शक्ति समझकर सर्वशक्तिवान को याद करना। तो ये अभ्यास और योग में क्या प्रयोग करेंगे, मैं आत्मा इस समय इस तन में हूं, इसके पहले स्त्री तन में, उसके पहले पुरुष तन में, उसके पहले स्त्री तन में, उल्टा जाते जाते द्वापर तक आना, और द्वापर के बाद फिर देव तन में, देवी देव, देवी देव, देवी देव। ये अभ्यास ठीक है ना आशीष भाई, अभ्यास कैसा है, अच्छा है ना। दूसरा, तो इससे देहवान भूल जाएगा, इंद्रप्रस्थ निवासी बन जाएंगे, मनुष्य पंथी जो बदबू है, जिस सड़ांध ने मनुष्य सृष्टि को अपूरित कर रखा है, ऐसी जो बदबू है उससे आत्मा मुक्त होगी, इंद्रप्रस्थ निवासी बनेगी। एक दूसरा काम भी दिया कुमारों को बाबा ने, टाइटल दिए हैं, सबसे पहला टाइटल राज ऋषि, दूसरा टाइटल कंप्लेन नहीं कंप्लीट, तीसरा टाइटल विघ्न विनाशक, चौथा टाइटल महावीर स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी में भी स्वराज्य, स्वराज्य अधिकारी नहीं, कुमार अर्थात राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी, ऋषि अर्थात तपस्वी। नंबर वन कुमार वो है जो संकल्प और स्वप्न में भी बाप के सिवा और किसी को याद ना करे, इस संसार का कोई भी व्यक्ति आकर्षण ना करे, आकर्षित ना करे, इस संसार के कोई भी वाइब्रेशंस अपनी तरफ न खींचे, ऐसी निर्विघ्न अवस्था मन की। कल कोई पूछ रहा था आकर्षण के बारे में, क्या पूछ रहे थे, आकर्षण और कुछ इच्छा और त्याग और आकर्षण। आकर्षण से तो इनमें क्या करना है, आपको अंतर क्या है, त्यागी महान है या फिर प्रश्न फिर से बताइए, एक तरफ त्याग और एक तरफ आकर्षण, इनमें अंतर क्या है, महान कौन है, त्यागी भी महान है जिसने आकर्षण को रोका है, आकर्षण को केवल रोकना नहीं, जो आकर्षण से मुक्त हो चुके हैं, जिनको इस संसार आकर्षण अब नहीं करता, ये देह आकर्षण नहीं करता, ये देह की इच्छाएं तृष्णाएं वासनाएं आकर्षित नहीं करती, इस संसार का कोई पदार्थ आकर्षण नहीं करता, इस संसार की कोई वस्तु, कोई साधन, कोई स्वभाव, कोई संस्कार कुछ भी आकर्षण नहीं करता, ऐसे जो त्यागी है, योगी है, तपस्वी है, वो ही महान है, आकर्षण से मुक्त, क्योंकि आकर्षण की व्यर्थता का समझ में आ गया है, किससे आकर्षण हो, उसमें इस देह से अस्थि पंजर है, ये देह चमड़ी को उखाड़ो तो फिर क्या दिखता है, अंदर अस्थि पंजर है, इस देह से क्या आकर्षण होना, क्योंकि वास्तविकता को समझे है, इसके लिए स्वतः ही आकर्षण से मुक्त हो गए, जन्म को देख लिया, मृत्यु को देख लिया, व्याधि को देख लिया, जरा को देख लिया, उससे होने वाले दुखों का अनुभव कर लिया, अनुभवी बन गए, देखा इस देह में कुछ भी सुख नहीं है, जिन्होंने इस देह का सुख भोगा उन्हें दुख ही मिला, कभी तृप्त नहीं हुई वो आत्माएं, ये देह केवल भ्रम उत्पन्न करता है सुख का, परंतु इसमें सुख है ही नहीं, आकर्षण करता है युवक और युवतियों को, उपन्यास पढ़ पढ़ के बुद्धि भ्रमित हो चुकी है सबकी, सिनेमा देख देख कर बुद्धि में पाप ने वास कर रखा है, इसके लिए यह देह आकर्षण करता है, परंतु देह की व्यर्थता को समझ लिया है, यह देह क्या है, क्या प्राप्ति होती है इससे, कुछ भी नहीं, जब ये समझ लिया और इतनी गहराई से समझा, उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, अपरोक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये ऐसा है, जन्म जन्म इसको भोगा, फिर भी भोग इच्छा समाप्त नहीं हुई। ये अनुभव ने आकर्षण से स्वतः ही मुक्त कर दिया, ऊपर उठ गए। देहभान से ऊपर उड़ने वाले आज के वरदान में इंद्रप्रस्थ निवासी अर्थात देहभान से ऊपर उड़ने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी है। देहभान से मुक्त, आकर्षण से मुक्त। तो कुमार अर्थात तपस्वी, कुमार अर्थात एक बाप मन में बुद्धि में संकल्प और स्वप्न में, कुमार अर्थात विघ्न विनाशक, वायुमंडल को भी विघ्न विनाशक बनाने वाले, पावरफुल बनाने वाले, जैसे वो सूर्य का उदाहरण दिया, स्वयं शक्तिशाली है और शक्तिशाली किरणें फैलाता है, तत्व का उदाहरण दिया, जैसे ये तत्व बदलते हैं वैसे ही कुमार भी वायुमंडल को भी बदलते हैं। महावीर हनुमान भी है तो गणेश भी है, दोनों ही है। तो ये सारे समान कंप्लेन करने वाले नहीं, कंप्लीट, ये सारे समान याद रखना है। छह ओम शांति।